मैं हूँ आपकी होस्ट श्रुति और आप सुन रहे हैं बिजनेस ऑफ ब्रांड्स पॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस ऑफ ब्रांड्स पॉडकास्ट में। आज का ये हियर मी आउट पॉडकास्ट थोड़ा हटके है। पहली बात तो ये कि इस इंटरव्यू को हम अंग्रेजी की जगह हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी ये कि हमारी आज की गेस्ट भी बेहद खास हैं। यह पॉडकास्ट इस सीरीज के बाकी पॉडकास्ट के मुकाबले थोड़ा लंबा भी है, पर उतना ही दिलचस्प भी। आइए आज आपकी मुलाकात कराती हूँ स्मृति से, जो कि एक एस्थेटिशियन है। बड़ी मुश्किलों से गुजर के उन्होंने अपना एक पार्लर खोला है, और ये है उनकी कहानी। स्मृति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसा बीता, आपने कहाँ तक पढ़ाई की, माहौल कैसा था, किन किन परिस्थितियों में आप पली बढ़ी, और कैसे आपने अपना सफ़र तय किया यहाँ तक पहुँचने का।
देखिए, सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं अपनी कहानी भी शेयर करूँ। और दूसरी बात, मेरी कहानी, मेरी बचपन, देखिए बचपन तो बहुत छोटे गाँव से बिलोंग करती हूँ, जो दार्जिलिंग की छोटी सी गांव है जहाँ स्टेट पड़ता है, चाय बागान की स्टेट है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लोग बाग जानते भी नहीं है कि वो क्या है, कौन सी जगह का नाम है। पूरा एड्रेस बताएंगे तो सोचेंगे को पता नहीं कहाँ का जगह का नाम बता रहे हैं। तो बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ। 11 जनों की फैमिली थी, हम 9 बच्चे, हमारे माँ बाप। बट 11 जनों की फैमिली में भी बहुत खुशी थी, थे माँ बाप थे जो मेहनत करते थे, और उनसे ज़्यादा मेहनत दो सिस्टर बड़ी वाली दोनों करते थे। माँ बाप ने पैदा किया, परवरिश दोनों ने किया। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि माहौल, मतलब धीरे धीरे बड़े होते तो मेरे अंदर मैच्योरिटी भी थोड़ी जल्दी आ गई। वहाँ की कल्चर सभी को पता है, दार्जिलिंग की कल्चर, जैसे दशहरा, दिवाली, यहाँ पे लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं तो वहाँ पे अलग से दशहरा मनाते हैं। खुशहाली थी थोड़ी, जैसे बड़ी होती गई तो समझ में आया कि खुशहाली और कष्ट वष्ट क्या होता है, होता है ना, बड़े होते होते ही तो जानते हैं आप सब कुछ
जी।
तो थोड़े बड़े हुए तो जाने कि हाँ भाई, घर में तो परिस्थिति थोड़ी ख़राब है, थोड़ा अक्ल आना शुरू हुआ तो पता चला कि भाई इंसान को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब तक आपके अंदर अकल नहीं आता, दिमाग नहीं आता, आप मैच्योर नहीं होते, आपको नहीं पता होता है कि आपके पास क्या है, नहीं, आपको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जितना भी मिलता था खुश रहते थे, बट जैसे बड़े होते गए वैसे ही तो समझ में आता है हर चीज़ का, तो मुझे भी समझ में आने लग गया। तो फिर मैं थोड़ा दुखी रहने लग गई। मैं देखती थी इतना बड़ा फैमिली को मेरे पापा अकेले संभालते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके होता है ना, तकलीफ देने लगता है। उस टाइम पे मेरे पापा की एज उतना नहीं होता, बट फिर भी वो रात को जब सोते थे तो जैसे बॉडी पेन करते सारा दिन काम करने के बाद इंसान का, तो वो जो उनकी आवाज़ आती थी ना, बिलीव नहीं करोगे, मैं घर पे नहीं सोती थी, मैं पड़ोस में मौसी के यहाँ सोती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि उनकी वो जो रात को थोड़ा बहुत अलट पलट करते बॉडी, तो उनका पेन होता था तो आवाज़ आती है, वो चीज़ें ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं घर पे नहीं सोती थी, मैं पास वाली मौसी के यहाँ जाके सोती थी। तो मेरे पापा बोलते थे यहीं आके कि वहाँ के, प्यार बहुत करते थे। जब पैदा हुई थी तो कहते सब कि पापा मेरे लिए नाखुश थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बेटा हो। ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, शायद आप सुना भी दो। तो मैं थर्ड हूँ घर में, मतलब तीसरी बहन हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे मतलब मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब मैं याद नहीं करती, क्योंकि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते, बहुत प्यार करते। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने ये बातें दोहराई अपने पापा को कि सब कहते आप मुझे मारने वाले थे, मेरी दादी ने बचाया था मेरे को, जैसे बच्चे पैदा होते तो निकलते हैं ना, तो वैसे में ही मेरे पापा ने चाकू ऐसे किया था, तो मैं दादी ने छीन के अपनी साड़ी में ऐसे छुपाया था। तो फिर साड़ी में छुपाया, मैं रोती तो मैं मर जाती, तो मैं रोई नहीं उस टाइम पे। तो फिर उन सब बातों का तब मैं क्या, मुझे पता ही नहीं क्या था नहीं था, है ना। तो लोग कहते थे, बट मैं उन सब बातों को मायने नहीं देती, क्योंकि उसके बाद की जो जर्नी थी, जो स्ट्रगल मेरे बाप ने किया हम सबको पालने के लिए, वो सब ज़्यादा मायने रखता है।
तो आपने फिर कैसे और कब तय किया कि आपको एक एस्थेटिशियन बनना है, आपको इस फील्ड में आना है? कैसे आप इस माहौल से निकली और आज यहाँ तक आई?
ये 2002 की बात है। मैं तब तक बोर्डिंग स्कूल में जॉब करती थी, तो वहाँ पे मैं 3 साल जॉब किया था। तो उसके हमारे वहाँ पे विंटर छुट्टी होती है, आपको पता होगा। तो विंटर छुट्टी में मैं अपने सिस्टर की यहाँ गई थी, तो वहाँ पे ना काफ़ी लड़कियाँ थी जो यहाँ इधर आके जॉब करती थी। तो वो लोग कहते थे कि वहाँ पे सैलरी ऐसे मिलते वैसे मिलते, तो थोड़ा होता है ना, अब घर की माहौल आपको पता है पहले से ख़राब है, तो सोचते हैं कि चलो इतना पैसा बच रहा है तो चल देते। उस टाइम के बाद शेयर करूँ, मैंने ना अपनी माँ को पर्सनली 2500 रुपया रखने दिया था। मैंने कहा था कि ये पैसे रख देना, मैं कभी भी मांग सकती हूँ। तो उस टाइम पे हुआ कि दीदी बोली चल हम भी चलते हैं, और हमारे यहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं था कि हम यहाँ पे आ रहे। तो एक लड़की थी कि जो इधर आना चाहती थी, तो उसने बोला चलो चलते। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि हम जाएंगे दिल्ली, तो 2500 रुपया ना वो दे दो मुझे। अब वो 30 रुपये की दिहाड़ी वाली 2500 रुपये मेरे को इकट्ठे कहाँ से देगी? तो फिर मैंने 2500 रुपये मांगी, अब दे नहीं रही। मैंने बोला कहीं से भी दे दो। फिर मेरी दीदी भी बोली कि मेरे पास भी पैसे नहीं, एक मंगलसूत्र है भेज देती हूँ। हमारी दोनों बहनें की बात, मुझसे बड़ी वाली थी, तो उसने भी अपनी मंगलसूत्र गिरवी रख दी। तो जीजा तो साथ में थे, चीज़ों की नहीं इंसान की वैल्यू होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैंने मम्मी से मांगी, मम्मी ने भी गाय बेच दिया, और गाय ने तुरंत बच्चा दिया। और चलो उस टाइम तो मैं वो पैसा लेके आ गई। अब देखो हम लोग NJP, आपको पता होगा, गुवाहाटी से पहले NJP पढ़ते हैं,
जलपाईगुड़ी,
हाँ वहाँ से बैठते हैं, और जनरल टिकट, कोई रिजर्वेशन नहीं, जनरल टिकट। वो लड़की ने वही धोखा दे दिया जिसके साथ आना था, यह हकीकत बात बता रही। फिर साथ में एक छोटी सी लड़की अपने पापा की पिटाई खा के आ गई घर से, बोली मुझे भी ले जाओ, मेरी मम्मी दिल्ली रहती है। उसके पास छोटा सा चिट्ठी था जिसपे उसकी माँ की एड्रेस थी। हमने बोला आप क्या करें? तो दीदी बोली वापस चलते हैं यार। हमने बोला क्यों बेइज्जती सहे भाई, दिल्ली के लिए निकले तो चलते, बिलीव नहीं करोगे बैठ गए ट्रेन में। वो बच्ची के हाथ में चिट्ठी था उसके भरोसे पे। तो ऐसे हम दिल्ली तक आ गए। अब दिल्ली में आए तो अब जाएंगे कहाँ, अब काम ढूंढना पड़ेगा भाई, दिल्ली आए तो काम ढूंढना पड़ेगा। नोएडा में आ गए, काम क्या करेंगे, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं था, और काम तो खाना बनाने का ही मिला भाई, अब जो भी मिला। अब आए हैं दूसरा घर में थोड़ी ना बैठे रहेंगे, खाना बनाने का काम लगा दिया। अब मैं उससे बोलूँ कि मुझे तो नहीं आता है, तो कहने लगे आंटी से पूछ लेना। तो आंटी से पूछी, फिर आंटी पहले मुझसे पूछी बेटा नाम क्या है। अब यहाँ पे सुनो बहुत ही मेरा नाम था, मेरे पापा ने जो रखा उन्होंने रखा सत्यवती नाम। अब उसमें से भी सब कट कट के नाम बुलाते थे, पूरा तो कोई बुलाते नहीं थे। तो जिस स्कूल में पहले टाइनिंग ट्रस्ट था, फिर बेलवे में किया, तो वहाँ पे तो मैं सिर्फ सत्या बन के रह गई थी, और जितना वहाँ पे वर्कर काम करते वो सारे मैं पक गई थी इस नाम से। तो मैंने कहा था अगर मैं यहाँ से निकल गई तो अपना नाम वाम चेंज करनी है। तो जैसे वहाँ आंटी ने पूछा बेटा नाम क्या है, मेरे मुंह में जो आया मेरे बोल, तो अगर उस हिसाब से बोले तो अब मैं हो गई हूँ 20 साल की, नहीं स्मृति 20 साल की हो गई।
तो अच्छी बात यह है कि आज हमारी मुलाकात सत्या से भी हो गई है और स्मृति से भी हो गई।
मेरे पापा ने बहुत अच्छा नाम रखा था सत्यवती, बट वो तो और कम बोलते थे, सिर्फ सत्य बुलाते थे पापा, पूरा नाम नहीं बुलाते। तो उनकी यहाँ पे 2-3 महीने रही हूँ, फिर दूसरा के एक कमरे के घर में इतना दिन रहना अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हम शिफ्ट हुए थे, फिर हम 2 बहनें अलग से रूम लेके रहने लगे। जहाँ मेरी हस्बैंड से मुलाकात हुई थी।
तो आपने अपना पार्लर खोलने का कब सोचा और कितने साल हो गए हैं आपको इस काम में?
इस काम में वैसे अगर गिना जाए तो 16-17 साल तो हो गया, बट पहले वर्किंग थी, फिर हस्बैंड से शादी हो गई, बड़ी बेटी हो गई, बड़ी बेटी होने के बाद ये काम शुरू किया था। एज ए हेल्पर ही मैं गई थी, बट वहाँ पे भी उसको भी क्रेडिट देना चाहूँगी, जो लड़की थी जिसने मतलब उसने सपोर्ट किया कि नहीं तू आ कर ले, तू कर सकती है, होता है ना कोई पहले स्टार्टिंग में एज ए हेल्पर किया, फिर वहाँ से मैंने 2 महीने में जितना बटोर सकती थी बटोरी, जो कि मैम को बहुत अच्छा लगा, वहाँ की मैम को, जैसे कि मैं 1500 की सैलरी में लगी थी, हालांकि 1500 से मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, बट मैंने सोचा हाथ का काम है
जी,
अगर हाथ का काम अगर मैं ले लूँगी तो आज 1500 कमा रही हूँ, कल 15000 कमा लूँगी, तो ये सोच के मैं इस लाइन में घुसी थी। तो 2 महीने के बाद ही मैम ने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी, क्योंकि उनको लगा कि नहीं ये लड़की काम की, और मैं कभी उनको नाखुश नहीं किया, वो तो स्मृति भी नहीं बुलाती थी, सिम्मी बुलाती थी, उनको लंबा लगता था स्मृति। उसके बाद फिर छोटी बेटी हुई, छोटी बेटी होने के बाद भी उनके यहाँ किया मैंने, कंटिन्यू किया तो 8 महीने के, मतलब लगभग मान लीजिए वहाँ पे मैं 5-6 साल तो थी। तो जब छोटी बेटी हुई फिर उसको देखने के लिए कोई नहीं था, तो उसके बाद मैंने फिर थोड़ा गैप लिया। उस टाइम पे फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि घर बैठे क्या करोगे, फिर उसने थोड़ा होप दिया होम सर्विस का, वहाँ से थोड़ा होम सर्विस किया, होम सर्विस करते करते फिर मैं जॉब लगी थी, मुझे चाहिए था पैसे तो मैंने मैम से एडवांस के लिए कहा था कि मैम मुझे 12000 रुपये एडवांस दे दीजिए, ज़रूरत है, उस टाइम किसी को भेजना था तो ज़रूरत था, तो मैम बोली कि 12000 तो नहीं है तो आप 3000 ले लो। तो तब मेरा माइंड होता है ना, दिमाग खिसक जाता कभी कभार, हम भी भाई इंसान हैं, दिमाग खिसक जाता है, मैंने भी मैम को बोल दिया कि मैम आप 3000 मेरे से ले लो, मुझे 12000 की ज़रूरत थी तो मैं 3000 लेके क्या करती। उस टाइम पे मैं ना माइंड सटक गया, मैंने कहा अब तो एक कुर्सी डाल लूँ मैं, चाहे कुछ भी कर लो अपना करूँगी। उस टाइम का जो उनका बिहेविंग था ना, वो चीज़ से थोड़ा सा लगा मेरे को बुरा लगा था, तो मैंने तब सोचा कि अब अपना करना है, इतना तो कर ही लूँगी कि अपने घर का रोटी पानी चला सकूँ। तो वहाँ से मैंने अपना फिर माइंड बनाया, उसके बाद शॉप ढूँढा, तो शॉप ढूँढा तो तब एक साथ में निकली मेरे साथ कि मैं भी देखूँगी, वहीं का उनकी बहुत पुरानी स्टाफ थी, तो किया उनके साथ भी 2-2.5 साल साथ में किया, फिर मैंने पार्टनरशिप हटाया, क्योंकि वो दूर से आती थी, टाइम से नहीं आती थी, और मैं सुबह 9:30 बजे से अपनी शॉप खुद साफ करती थी। मैं सोचती थी जब इतने साल आपने किसी और के लिए किया, दूसरों के यहाँ पे किया, करके दिया, तो अब तो अपना है, उसमें क्या दिक्कत है।
बिल्कुल सही।
तो 2.5 साल के बाद पार्टनरशिप हटाया था, मतलब मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मेरी नीयत बहुत साफ है, मेरे को किसी चीज़ की लालच नहीं, मैं कभी किसी को देख के ये नहीं सोचती उसके पास है तो मेरा क्यों नहीं। मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कमा के नहीं रखा है, बस तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दूँगी, अपना कमा के खाओ, जब अपना जोड़ोगे ना वो तुम्हारा होगा, हमारा दिया हुआ तुम्हारा नहीं है, जो खुद मेहनत करके आप जमा करोगे वो आपका होगा ना, हमारा दिया हुआ क्या बोलोगे, माँ छोड़ के गई थी, बाप छोड़ के गए थे, अच्छा नहीं लगा, अपना करके खाना। तो मैं सीधा बोल देती हूँ, आपके घर से कुछ नहीं मांगते हम, नहीं हम मायके से मांगते, ना हम ससुराल से मांगते, जो हो सकता है उल्टा करते हैं, तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए।
मैं हूँ आपकी होस्ट श्रुति और आप सुन रहे हैं बिजनेस ऑफ ब्रांड्स पॉडकास्ट। हमें आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है आज आपकी सारी कहानी सुनकर और आपके बारे में और बेहतर समझकर, आपको और बेहतर जानकर। और आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस प्रोफेशन में किस तरह के किस तरह की चुनौतियां हैं जो आपने फेस की या अक्सर लोग फेस करते हैं, किस तरह की चुनौतियां और क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जिसके बाद भी फिर आप मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हमें तो मतलब ये काम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तभी ये करते हैं।
मेरे ख्याल से चुनौतियां कहाँ नहीं होता है, चुनौती हर जगह पे। अगर आप कोई अलग सा डिश बनाने जाओगे वो भी आपके लिए चुनौती होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या डालना है, क्या क्या मिला के बनाना है उस चीज़ को, है ना।
बिल्कुल,
चुनौती को आप सामना करो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर चुनौती को चुनौती की तरह सोच के बैठेंगे कि हाई मैं क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, तो फिर नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, बेनिफिट अगर आप बोलो कि आपको क्या फ़ायदा है, पहली बात तो यह आपका हाथ का काम है। दूसरी बात, एक बार आपने सीख लिया तो हाथ का काम आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसमें यह है कि देखो, अगर आज आप सीखते हो तो इन फ्यूचर तक के लिए हो जाता है। कोई भी काम हो, ये हो चाहे आपकी नर्स ट्रेनिंग का काम हो, डॉक्टरी हो, चाहे कुछ भी हो, एक बार सीख लेते तो वो आपकी मतलब रोजी रोटी बन जाती है। कहीं पे भी कभी भी आपका काम आता है। और मेरे पापा कहते थे कि वैसे तो 10 उंगली में 10 नौकरी होनी चाहिए, उससे इंसान भूखा नहीं रहता, चाहे वो काम कुछ भी हो। अगर आज की डेट में मेरी परिस्थिति खराब जाए, मुझे कुछ और काम करना पड़े, मुझे नहीं आएगा सारा, क्योंकि काम तो काम है।
मेरे ख्याल से ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही कि जो आपके हाथ का काम है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपसे हर चीज़ें एक पॉइंट पर छीनी जा सकती हैं, लेकिन ये जो आपकी कमाई है, जो आपका हुनर है, ये आपसे
ये तो आप अगर सुनो छीन नहीं सकते। अगर ये जगह छोड़ के आपको कहीं और जाना है तो ये काम आपको वहाँ भी काम आएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात की मैं काफ़ी सराहना करती हूँ और फिर से शुक्रिया करती हूँ आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। कि जैसा आप बता रही हैं, आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत चुनौतियों भरी रही है और बहुत दिलचस्प रही है, और आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ का सामना किया है और आप आगे बढ़ी हैं। आपने अपने जन्म के साथ अपनी जंग लड़नी शुरू कर दी और आज आप जब भी मैं आपसे मिलती हूँ आप इतने खुशी खुशी रहती हैं, मजाक करती हैं, आप गेम्स खेलती हैं, आप म्यूज़िक सुनती हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो ये वाकई काबिले तारीफ़ है। तो क्या कोई ऐसा किस्सा है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके क्लाइंट्स से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, जो आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगी, शुरुआती दिनों का या आज कल के दिनों का, जो कोई चटपटी सी यादें हो, ऐसा कुछ जो आपके मन में अभी एकदम से आ रहा हो?
पहली बात तो इस प्रोफेशनल में आने के बाद कोई A to Z नहीं सीखता है ना, तो हमने भी नहीं सीखा। पहले ABCD से ही शुरू होती है, हर काम पे ABCD से शुरू होती है। और कोई भी काम करने से पहले आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप एक आईब्रो कर रहे हो तो क्लाइंट को पहले देखो कि क्या है नहीं है, आप उनको कैसा सूट करेगा, देना पड़ता है। तो ऐसे किससे अगर मैं बोलूँ तो वो ना मुझे मेरी गलती नहीं लगती है, मैंने हेयर कलर ठीक निकाला था, लेकिन मैं लगा रही हूँ तो लाल लाल हो रहा है, उनको तो बेस कलर देना था मुझे। फिर मैं जाके नंबर देख रही हूँ तो जो नंबर मैंने ऊपर निकाल के रखी थी वो नंबर डाल के दूसरा नंबर रख दिया, जो स्टाफ थे उनके पहले पुराने। तो मतलब ऐसे भी होते हैं कि आप मैं भी मुझे तो डर लगेगा ना कि मतलब मेरे इससे काम खराब हो रहा है, ऑब्वियसली मैनेजर बैठे तो वो तो मुझे सुनाएंगे। मैं देख रही हूँ लाल हो रही। अब मैंने कहा कि आंटी एक मिनट में आई, तब मैनेजर बाहर थी। मैंने बोला आना दीदी मैंने तो कलर ठीक निकाला था। फिर वो कलर चेक करी, ये निकाल के लगाती। मैंने बोला ये नहीं निकाला था, मैंने ये निकाला था। अब होता ना डिस्कस, तो कैसे लाल हो गया वो, थोड़ी गड़वाली थी अब भड़की हुई। चलो चलो आपका सिर धो देती हूँ, ये थोड़ा दूसरा कलर आ गया। वही मैं सोचू लाल क्यों हो रहा है, क्लाइंट कह रही है वही मैं सोचू लाल लाल क्यों हो रही है। मुझे कॉमेडी तो नहीं बट हंसी बहुत आती है। मैं कोई भी मतलब कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी बड़े से बड़े पोस्ट, अगर मुझे उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिख जाता है मैं मुँह पर हंस देती हूँ। तो जब मैं जॉब करती थी, मतलब जिसमें सबसे पहले शुरू किया था, वहाँ 8 बजे ऑफ होता था, और 8 बजे क्लाइंट आके अगर आपसे कहे कि थ्रेडिंग हो जाएगा, तो ऑनर आपका शॉप है, आपको तो इनकम चाहिए, आप मना थोड़ी करोगे। अब मैम थी, हाँ हो जाएगा। अब जैसे आप थ्रेडिंग शुरू करते हो तो क्लाइंट कहते, सोच के तो आई थी वैक्सिंग भी करा लूँ। करते करते क्लाइंट का पूरा काम होता था। अब पूरा काम होता था तो उनकी जो सिचुएशन होती थी, अब इकट्ठे आप पेडिक्योर भी करनी है, मैनिक्योर भी करनी है, फेशियल भी करनी है, तो ना लाफिंग बुद्धा की तरह लगती थी मुझे, जैसे बिठाते हम तो लगते, एक जने हाथ पे लगे, एक जने पैर पे लगे, एक जने फेस पे, तो मुँह पे हंसती थी और मैं बोलती रहती थी मैम को। मैम ना काम छोड़ के बाहर जाके हंस के आती थी, फिर कहती थी ऐसे मत किया कर क्लाइंट के सामने, तो देखो आप देखो सामने से देख लो, लाफिंग बुद्धा से कम थोड़ी लग रही। कॉमेडी बहुत करती थी।
और तो आप वो चीज़ तो आप अभी करती हैं, आप बहुत खुश मिजाज।
देखो मेरा कहना ये होता है कि कल का सोच के ना आज का दिन नहीं खराब करना होता है, चाहे आपके पास हो चाहे ना हो। मेरे पास नहीं है, आपको पता है, आप तो जानते हो मुझे अच्छे से, मेरे पास नहीं है। मैंने इन 20 सालों में यहाँ आया, मुझे 20 साल हो गया, इन 20 सालों में मैंने कुछ नहीं कमाया। अगर मैंने कमाया, मेरी 2 बेटियाँ हैं जो कि टचकुट अभी तक तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही रहे, कोशिश तो यही रहती है। छोटी वाली चंचली है थोड़ी, बड़ी वाली समझदार है। बाकी मैंने ना गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं लिया, ना जमीन लिया, ना मकान लिया, बट हाँ मैं फिर भी खुश रहती हूँ। अभी इस टाइम पे आपको पता है लॉकडाउन के बाद सबकी परिस्थिति क्या है, मेरी भी परिस्थिति खराब है, कर्जे है भाई, देना है दूसरों का, अब नहीं है तो नहीं है, कहाँ से दूंगी। अब टेंशन लेके आज का दिन तो नहीं खराब कर सकती ना, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आज अच्छा काम आएगा तो मैं किसी का तो दूंगी।
बिल्कुल। वैसे आपसे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, पर जाते जाते क्या आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगी?
तो मैं कहना चाहूँगी, स्ट्रगल कीजिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अपना विल पावर सबसे बड़ी चीज़ होती है। विल पावर खोना नहीं चाहिए इंसान को, चाहे वो किसी भी चीज़ में। अगर आप बीमार हो तो अगर आपकी अंदर का विल पावर अच्छा है तो आप कोई सी बीमारी से लड़ सकते हो। तो वैसे ही अगर किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस, विल पावर अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें हमेशा बना के रखिए। नीयत साफ रखिए, क्योंकि नीयत का कोई गारंटी नहीं ले सकता है, तो इंसान का तो हर कोई गारंटी ले ले, नीयत का नहीं ले सकता है। खुद का नीयत साफ रख के बाकी तो साफ जमाना हो ही जाएंगे।
स्मृति जी, मुझे तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी आपने कहीं ना कहीं अपनी बातों से लुभा लिया होगा और उनके दिल में अपनी जगह बना ली होगी। कितना कुछ सीखने को मिलता है आपकी बातें सुन के, और हमें बहुत बहुत गर्व है आप पर। शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। मेरा नाम है श्रुति, हमारी बातचीत हो रही थी स्मृति जी से, और आप सुन रहे थे बिजनेस और ब्रांड पॉडकास्ट जो कि जी कैफे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।